नमस्कार भारत, आज है 17 अगस्त दिन शनिवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। सुरक्षा परिषद में कश्मीर मामले पर हुई चर्चा। भारत ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला।
Matters related to Article 370 of the Indian Constitution are entirely an internal matter of India.
उधर श्रीनगर में जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरे लोग।
आज हम बोल रहे हैं जो आर्टिकल 35 और 370 है वो मोदी ने गलत फैसला किया है, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
और होगी विवेचना भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई पर।
टैगोर उन्होंने जब बेबी विक्रम को देखा तो उनके स्कल का शेप देख के कहा कि ये आगे जाके बहुत बड़े काम करेंगे।
मगर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। चीन ने आरोप लगाया है कि भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने का फैसला लेकर क्षेत्र में तनाव बढ़ाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में हुई एक बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत जोंग जुन ने कहा कि चीन चाहता है कि सभी पक्ष संयम बरतें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने जोर दिया है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वो इस मामले से दूर रहें। लेकिन पाकिस्तान की दूत मलीहा लोधी का कहना है कि कश्मीर पर हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक ने कश्मीर के भारत का आंतरिक मामला होने के दावे को खारिज कर दिया है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विषय पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से फोन पर चर्चा की है और भारत के साथ बातचीत के जरिए तनाव कम करने के लिए कहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बताया,
उन्होंने हमारी गुजारिश को और मामलात की संगीनी को भांपते हुए वो हिंदुस्तान के ट्रैक में नहीं आए और उन्होंने ये इजलास कन्वीन किया जो वो हरगिज नहीं चाहते थे। जरूरत नहीं है इस इजलास के कन्वीन होने से। आज दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला नहीं है, ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है और इसका रेजोल्यूशन जो है दरकार है।
अमरीकी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन F-16 लड़ाकू विमान बेचने के लिए $8 अरब का सैन्य सौदा करने की दिशा में आगे बढ़ा है। यह सौदा ताइवान के साथ किया जा रहा है। ताइवान के साथ कई दशकों का यह सबसे बड़ा सैन्य सौदा होगा। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कांग्रेस को जानकारी दे दी है। ये सौदे को मंजूरी देने की दिशा में पहला कदम है। हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ताइवान ने मार्च में इस रक्षा सौदे के लिए बातचीत शुरू की थी। ताइवान को अपना ही पाखंडी प्रांत मानने वाले चीन ने इस रक्षा सौदे का लगातार विरोध किया है। अमेरिका और चीन इस समय हांगकांग में जारी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को लेकर भी भिड़े हैं। अमेरिका के एयरपोर्टों पर कंप्यूटरों में आई गड़बड़ी की वजह से कस्टम जांच प्रभावित हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इस गड़बड़ी को ठीक किया जा रहा है और धीरे धीरे कंप्यूटर ऑनलाइन आ रहे हैं। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट ने ट्वीट कर बताया है कि उसके कंप्यूटर वापस सामान्य स्थिति में आ रहे हैं और इस गड़बड़ी का फ्लाइटों पर व्यापक असर नहीं हुआ है। इस गड़बड़ी की वजह से सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय यात्री प्रभावित हुए हैं। कम से कम 4 प्रांतों में एयरपोर्टों पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गईं और कस्टम जांच में कई घंटों का समय लगा। अमेरिका के कस्टम और बॉर्डर पेट्रोल विभाग को बैकअप कंप्यूटर प्रणाली का इस्तेमाल करना पड़ा है। अमेरिका ने ईरान के एक तेल टैंकर को जब्त करने के लिए वारंट जारी किया है। ब्रितानी क्षेत्र जिब्राल्टर में हिरासत में रखे गए इस टैंकर को एक दिन पहले ही रिहा किया गया था। अमेरिका के न्याय विभाग का कहना है कि ये जहाज, इस पर लदा सभी तेल, करीब $10 लाख नकद, सभी को प्रतिबंधों का उल्लंघन करने, बैंक धोखाधड़ी करने, मनी लॉन्ड्रिंग करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आधार पर जब्त किया जाए। ग्रेस वन नाम के इस तेल टैंकर को जिब्राल्टर ने बीते महीने यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के शक में हिरासत में लिया था। टैंकर पर सीरिया के लिए तेल की तस्करी करने के आरोप थे। गुरुवार को जिब्राल्टर के एक जज ने अपने फैसले में कहा कि अपना माल सीरिया ने ले जाने की शर्त पर इस टैंकर को छोड़ दिया जाए। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लाइव। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। कल देर रात कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा खत्म हुई। बैठक अनौपचारिक थी, जो बंद कमरे में हुई उसका ब्यौरा सामने नहीं आया, मगर बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत, पाकिस्तान और चीन के राजदूतों ने आकर अपना अपना पक्ष रखा। भारत ने कहा कश्मीर उनका अंदरूनी मामला है, मगर पाकिस्तान ने कहा यूएन उसके इस दावे को खारिज कर चुका है। चीन ने भारत पर इलाके में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। पूरे ब्यौरे के साथ संयुक्त राष्ट्र से सलीम रिजवी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कश्मीर मुद्दे पर बैठक को लेकर जहां पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने में कूटनीतिक सफलता का बिगुल बजा रहा है, वहीं भारत ने इस बैठक के बाद साफ किया है कि अनुच्छेद 370 से जुड़े मामलों में भारत सरकार का कदम अंदरूनी मामला है। शुक्रवार को भारत प्रशासित कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्यों की बंद कमरे में अनौपचारिक बैठक हुई। ये बैठक पाकिस्तान द्वारा लिखे गए खत के बाद बुलाई गई थी। बैठक समाप्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों से भारत, चीन और पाकिस्तान के राजदूतों ने अलग अलग बात की। भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने भारत का रुख रखते हुए कहा,
मैटर्स रिलेटेड टू आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन कह रहे थे कि अनुच्छेद 370 का मुद्दा भारत का आंतरिक मुद्दा है और इसका बाहरी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का फैसला वहां की आर्थिक सामाजिक विकास के लिए है। भारतीय राजदूत का कहना था कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने के लिए आज कई फैसले लिए गए हैं। अपने बयान में सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक देश जिहाद और हिंसा की बात कर रहा है और हिंसा किसी मसले का हल नहीं होती।
ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इज दैट वन स्टेट इज यूजिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ जिहाद।
भारतीय राजदूत ने फिर दोहराया कि पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते के तहत द्विपक्षीय बातचीत से ही मसले सुलझाए जा सकते हैं। अकबरुद्दीन ने कहा कि अगर पाकिस्तान को भारत से बात करनी है तो उसे पहले आतंकवाद को रोकना होगा। वहीं चीन के राजदूत जांग जुन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद के देशों ने माना है कि इस मसले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए और एक तरफा फैसले नहीं लिए जाने चाहिए। साथ ही चीन ने कहा कि उसका मानना है कि इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के तहत सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में स्थिति बहुत खतरनाक होती जा रही है। चीन के राजदूत जांग जुन ने कहा कि सदस्य देशों ने वहां मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई है, लेकिन भारतीय राजदूत ने चीनी दूत की इस बात पर निंदा की कि वो सुरक्षा परिषद की ओर से बाहर आकर बयान कैसे दे रहे हैं। अपने बयान में चीन के राजदूत ने लद्दाख का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 लद्दाख से भी हटी है और वो इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानते हैं। वहीं पाकिस्तान ने कहा है कि उसने कश्मीर मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है। पाकिस्तान की राजदूत मलिहा लोधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा,
द वॉइस ऑफ पीपल ऑफ ऑक्युपाइड कश्मीर हैज बीन हर्ड टुडे in the highest diplomatic forum of the world. They are not alone. Their voices have been heard. Their plight, their hardship, their pain, their suffering, the occupation and the consequences of that occupation has been heard in the UN Security Council.
Pakistani Rajdoot Malia Lodhi keh rahi thi ki aaj Sanyukt Rashtra Suraksha Parishad mein Bharat adhikrit Kashmir mein rehne wale logon ki vishv ke sabse bade kootneetik manch par aawaz suni gayi hai. कश्मीरी अकेले नहीं हैं। मलिहा लोधी का कहना था कि कई दशकों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का यह मुद्दा उठा है और आज की बैठक ने भारत के इस दावे को खारिज कर दिया है कि जम्मू कश्मीर उसका आंतरिक मामला है। इस बैठक में पाकिस्तान और भारत शामिल नहीं थे क्योंकि ये दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं हैं। सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद परिषद की ओर से कोई लिखित बयान भी नहीं जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि अमरीका, फ्रांस और जर्मनी ने इसका विरोध किया था, जबकि चीन चाहता था कि लिखित बयान जारी किया जाए। लेकिन अब पाकिस्तान का कहना है कि अभी तो कूटनीतिक स्तर पर कश्मीर के मामले में उसका यह पहला कदम था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का ख्याल है कि कश्मीर का मामला पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी उठाने की कोशिश की जा सकती है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
तो सुरक्षा परिषद में जहां चर्चा हुई, वहीं भारत प्रशासित कश्मीर में श्रीनगर के सौरा इलाके में कल जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और कश्मीर को मिली स्वायत्तता को खत्म करने के फैसले का विरोध किया।
आपकी हमें कोई जाति दुश्मनी हिंदुस्तान से नहीं है। हम मोदी को भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तस्लीम करते हैं।
आज हम बोल रहे हैं जो आर्टिकल 35 और 370 है वो मोदी ने गलत फैसला किया है, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें वो मंजूर नहीं है।
घरों में बंद कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं यहाँ पे। हम कश्मीरी बस यही चाहते, हमें आजादी चाहिए।
बच्चा बच्चा यहाँ पे, छोटा बच्चा जो मतलब अभी दूध पीता है ना बच्चा, वो भी बोलता है कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। हम आज़ादी मांगते हैं, आज़ादी हमारा हक है।
ना हमें इनसे लड़ाई ना किसी और से लड़ाई, हम अपने हक के लिए चतुर चाहते हैं कि हमारा हक हमसे दिया जाए, ना कि इससे छेड़छाड़ किया जाए।
हम जान देने के लिए तैयार है, इतना आप समझ लो कि हम जान देने के लिए तैयार है आज़ादी के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
श्रीनगर में प्रदर्शन। इस बीच भारत सरकार ने कहा है कि कश्मीर में पिछले 13 दिनों से जारी बंदिशें अब आहिस्ता आहिस्ता हटा ली जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या टेलीफोन संपर्क की है, जिससे वहां के लोगों की जिंदगी पर तो असर पड़ा ही है, पत्रकारों को भी कश्मीर के हालात को बताने में कठिनाई हो रही है। अभी कितना चुनौतीपूर्ण है कश्मीर में खबरें हासिल करना, इस बारे में बताया हमें बीबीसी संवाददाता माजिद जहांगीर ने, जो कल हमारे दिल्ली दफ्तर आए थे।
पिछले 8 दिन हमने रिपोर्टिंग की कश्मीर से, पूरी जो बीबीसी की 4-5 टीमें थी कश्मीर में। मैं साउथ कश्मीर गया, मैं नॉर्थ कश्मीर गया, मैं श्रीनगर सिटी के डाउनटाउन इलाके में ईद के दिन भी गया मैं, और किस तरह हम वहां डाउनटाउन पहुंचे वो जंग लड़ने के बराबर था, क्योंकि आपको हर 1 किलोमीटर पर सिक्योरिटी फोर्सेज रोकते हैं, आपको जवाब देना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। और जब आप लोगों के पास पहुँचते हैं तो लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि भाई हम एक इंडिपेंडेंट मीडिया के नुमाइंदे हैं, बीबीसी से हैं, क्योंकि लोगों में काफ़ी गुस्सा है मीडिया को लेकर के, और ख़ासकर इंडियन मीडिया को लेकर के। जिस तरह से इंडियन मीडिया ने कश्मीर की तस्वीर पेश की कि हमेशा नॉर्मल सी दिखाई कश्मीर में, बेशक कि वहाँ बहुत बड़ी घटनाएं नहीं हुई वायलेंस की, तो लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि एकदम कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। आपने पूरी आबादी को कैद करके रखा है जगह जगह। मैं बारामुल्ला गया, वहाँ की मैं आपको एग्जांपल दूंगा। बारामुल्ला से, श्रीनगर से बारामुल्ला 1 घंटे का रास्ता है, अगर आप स्मूथली जर्नी करते हैं तो हमें कम से कम 2.5 घंटे लगे पहुँचने में, कि हर 1 किलोमीटर पर आपको सिक्योरिटी फोर्सेज रोकती हैं। अनंतनाग गए हम तो वहाँ तो कर्फ्यू पास हमसे मांगा गया, और सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा सख्त सिनेरियो था सिक्योरिटी का कि मेरे साथ हमारे दूसरे साथी थे आमिर पीरजादा और मैं थे, तो हम इतने खौफ में आ गए कि हमने कैमरा भी नहीं खोला। फिर अनंतनाग में कोई सिविलियन दिखा नहीं हमें, सिक्योरिटी था और जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लोग थे, तो उनका इतना बहुत ही जो एग्रेशन जिसको कहते हैं कि आप कर्फ्यू पास दिखाइए, भाई सरकार तो कहती है कर्फ्यू है नहीं, तो हम कहाँ से कर्फ्यू पास, क्योंकि प्रेस को बिल्कुल इन्होंने कर्फ्यू पास इस बार इशू नहीं किए। और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना एक रिपोर्टर के लिए जंग लड़ने के बराबर है कश्मीर में, और इसीलिए अभी तक पूरी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन हमसे जितना भी हो सका, हॉस्पिटल्स में गए हम, उन जगहों पे गए हम जहां दूसरे मीडिया के लोग नहीं पहुंच पाए, और जितना हमसे हो सका तो अपने श्रोताओं के लिए, अपने रीडर्स के लिए वो चीज़ें हमने ला के सामने रखी उनके लिए।
माजिद जहांगीर। वैसे पाबंदी केवल कश्मीर तक सीमित नहीं है, कल लखनऊ में भी कश्मीर को लेकर एक प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को नज़रबंद कर लिया गया। इनकी अगुवाई जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे कर रहे थे। क्या है पूरा मामला बता रहे हैं लखनऊ से बीबीसी संवाददाता समीर आत्मज मिश्र।
मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे शुक्रवार को शाम 6 बजे लखनऊ के हजरतगंज में कैंडल मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे। उनका यह प्रदर्शन घाटी में जारी बंदी के खिलाफ और कश्मीरी लोगों के समर्थन और उनके प्रति एकजुटता दिखाने के लिए था, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस संदीप पांडे के घर पहुंची और उन्हें हजरतगंज जाने से रोक दिया। संदीप पांडे के कुछ साथियों को भी उनके घरों में ही रोक दिया गया। संदीप पांडे ने बीबीसी को बताया,
4 बजे के बाद पुलिस शोएब साहब के यहाँ पहले पहुंची और वहाँ पे 5-6 कार्यकर्ता थे, राजीव यादव वगैरह, उनको वहाँ पे नजरबंद किया। मेरे घर पे भी मैंने देखा पुलिस आ गई। हमने पहली बार कोशिश की करीब 5:15 बजे निकलने की, उन्होंने रोका, और दूसरी बार करीब 5:30 बजे फिर उन्होंने रोका, और फिर हमने एक अंतिम कोशिश की, प्ले कार्ड और मोमबत्तियों के साथ हम बाहर निकले। तीसरी बार पुलिस ने नहीं रोका, हम करीब 1 किलोमीटर चल के गए, पुलिस साथ में चल रही थी, लेकिन असल में वो एक बस बुला रहे थे हम लोगों की गिरफ्तारी के लिए। तब तक हम लोग 1 किलोमीटर आगे बढ़ गए थे, उसके बाद तेज बारिश आ गई तो हमें खुद रुकना पड़ा एक पेड़ के नीचे, तो फिर हम लोगों ने अपने तरफ से ही फिर कार्यक्रम को स्थगित किया।
संदीप पांडे इससे पहले 11 तारीख को भी प्रदर्शन करने वाले थे लेकिन उस दिन भी उन्हें रोक दिया गया था। उनका कहना था कि पुलिस ने अगले दिन बकरीद होने के कारण उनसे प्रदर्शन रोकने का अनुरोध किया था, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन स्थगित कर दिया। लेकिन संदीप पांडे का आरोप है कि उस दिन भी उन्हें नजरबंद रखा गया था और पुलिस वाले उनके घर के बाहर मुस्तैद थे। लखनऊ पुलिस के आला अधिकारी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। काफी कोशिशों के बाद लखनऊ में ट्रांस गोमती इलाके के एडिशनल SP अमित कुमार ने सिर्फ इतना ही कहा,
हर दो दिन में ये लोग पता नहीं आरोप लगाते रहते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, मुझे पर्सनली इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बेटर होगा वैसे भी आप जो PRO हैं उनसे बात कर लें, SSP साहब के PRO जो हैं।
SSP लखनऊ घंटों प्रयास के बावजूद इस मुद्दे पर बात करने के लिए उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन उनके PRO आशुतोष द्विवेदी का कहना था कि संदीप पांडे और उनके साथियों को नजरबंद नहीं किया गया था बल्कि उन्हें हजरतगंज में प्रदर्शन करने से रोका गया था क्योंकि कोर्ट के आदेश पर वहां धरना प्रदर्शन की मनाही है। यह अलग बात है कि विधानसभा भवन के अलावा हजरतगंज चौराहे पर गांधी प्रतिमा और अंबेडकर प्रतिमा के सामने ही लखनऊ के ज्यादातर धरना प्रदर्शन होते हैं। संदीप पांडे प्रदर्शन रोकने के पीछे ये वजह बताते हैं।
ये जो कश्मीर में कर रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि भारत में कहीं पे भी अगर कोई कश्मीर के बारे में कुछ करने की कोशिश करेगा, कश्मीर के लोगों के अधिकारों की बात करेगा, तो उसके ऊपर भी पाबंदी इन्होंने लगा दी है।
संदीप पांडे का कहना था कि उनके अलावा उनके वकील मोहम्मद शोएब और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं को भी नजरबंद किया गया था। बहरहाल संदीप पांडे और उनके साथी हजरतगंज भले ही न पहुंच पाए हों लेकिन लखनऊ में कैंडल मार्च निकालने में सफल रहे। हालांकि पीछे पुलिस भी नहीं रही, कैंडल मार्च भले ही निकल गया लेकिन प्रदर्शनकारियों को उनकी पसंदीदा जगह तक न पहुंचने देने के अपने मकसद में वो भी कामयाब रही। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और बताते चलें कि कल से जो कश्मीर में संचार माध्यमों और इंटरनेट पर जारी पाबंदी है उसकी वजह से BBC ने अपने दिन भर कार्यक्रम यानी जो शाम का प्रसारण है उसकी अवधि बढ़ा दी है और शाम को जो BBC का प्रसारण होगा वो 1 घंटे का होगा और आज उसमें होगा इंडिया बोल।
BBC इंडिया बोल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किया ऐलान, सेना के तीनों अंगों के प्रमुख के तौर पर होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या है इस घोषणा का मतलब? क्या इससे रक्षा तैयारियों को मिलेगी मदद या होगा नुकसान? यही है इस बार इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 17 अगस्त शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
और अब विवेचना। भारत को चांद पर ले जाने की नींव रखी थी विक्रम साराभाई ने। भारत को अंतरिक्ष तक पहुंचाने में अगर किसी शख्स की सबसे अधिक भूमिका थी तो वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। वो न सिर्फ परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे बल्कि अन्य कई संस्थाओं के उदय में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने अंतरिक्ष विभाग में अपने करियर की शुरुआत उन्हीं की देखरेख में की थी। विक्रम साराभाई की जन्म शताब्दी पर उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प प्रसंगों को याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
एस्पेक्ट ऑफ स्पेस रिसर्च व्हिच आई वुड लाइक टू स्ट्रेस मोस्ट इज इन रिलेशन टू द नेशनल कैपेबिलिटी द सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट दिस विल जनरेट एंड इफ आई वेयर टू गिव माय ओन इवैल्यूएशन ऑफ दिस आई थिंक द बेनिफिट्स ऑफ दिस फार आउटवेह।
ये आवाज है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को अस्तित्व में लाने वाले विक्रम साराभाई की। 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद की एक बड़ी कपड़ा मिल के मालिक अम्बालाल साराभाई के घर एक लड़का पैदा हुआ। विक्रम साराभाई की जीवनी लिखने वाली अमृता शाह बताती हैं।
जब उनका जन्म हुआ मेरे ख्याल से 4 भाई बहन तब थे, 2 विक्रम साराभाई के बाद पैदा हुए, तो उनको बुलाया गया कि भाई हुआ है, तो दौड़ के ऊपर चले गए और बोले कि हाँ कितने बड़े खान हैं, बिल्कुल गांधी जी की तरह हमको इसको बंद करके पान की तरह बंद करना है।
विक्रम साराभाई की बेटी मल्लिका साराभाई आज जानी मानी नृत्यांगना है। वो बताती हैं कि उन्होंने अपने पिता को हमेशा विचारों में मग्न देखा। मशहूर चित्रकार रोडा की कलाकृति थिंकर की तरह उनका हाथ हमेशा सोच की मुद्रा में उनकी ठुड्डी पर रहता था। अपने पिता की शख्सियत को याद करते हुए मल्लिका साराभाई बताती हैं,
बहुत डाउन टू अर्थ, जिसके भी साथ बात करे उसको 100% कॉन्सेंट्रेशन दे, बिल्कुल हायरार्की न हो, बहुत मौजीले पिता, बहुत सिंपल, हमेशा सफेद खादी के पजामा कुर्ता पहनते, सूट पहनना पड़ता तो नीचे कोल्हापुरी चप्पल पहनते, वेस्टर्न और क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक, बच्चे उनके सबसे बड़े, हम दोनों, मेरे भाई और मैं, प्राइड थे, और जब भी कुछ उन्हें अवार्ड मिलता था तो हमेशा एटीट्यूड ये थी कि ये तो आप दोनों के लिए मिले आया हूँ। एक बहुत डेमोक्रेटिक बाप, जो मैं 3 साल की थी तब भी अगर फैमिली के बारे में कुछ डिसीजन लेना हो जिसका अफेक्ट मुझ पे पड़ेगा तो मुझे और मेरे बड़े भाई को कन्विंस करने की कोशिश करके कंसेंसस लाके फिर ही वो होगा। फॉर इंस्टेंस, एक नई गाड़ी खरीदनी हो तो गाड़ी का कलर कौन सा होगा, मुझे याद है मैं 3 साल की थी तब मैंने हट पकड़ी थी कि अम्मा की जो नई फियट आती थी वो पिंक कलर की होनी चाहिए, और मुझे याद है कि 3 या 4 दिन हर रोज वो लोग मुझे कन्विंस करते रहे और जब फाइनली मैं कन्विंस हुई तब गाड़ी खरीदी गई काले रंग की।
कैम्ब्रिज से वापस लौटने के बाद विक्रम साराभाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर चले गए, जहां उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन की देखरेख में अपना शोध जारी रखा। वहीं उनकी मुलाकात महान परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा से हुई, जिन्होंने उनकी मुलाकात मशहूर नृत्यांगना मृणालिनी स्वामीनाथन से कराई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी।
होमी भी बहुत एक कॉनोसियर थे चीजों का, आर्टिस्ट थे, बहुत खूबसूरत ड्रॉ करते थे, उनको भी वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद था, वो भी एक काफी वेल टू डू फैमिली से आते थे, तो वो हमेशा पापा को टीज करते थे कि तुम इतने इंडियन खूबसूरत कपड़े में क्यों घूमते हो, तुम तो साइंटिस्ट हो, तुम ऐसे कपड़े पहनो जो तुम्हें साइंस में सूट करे। और होमी भाभा और अम्मा बैंगलोर में बैडमिंटन पार्टनर्स थे, तो वो अक्सर बैडमिंटन खेलते थे और होमी ने ही उनको इंट्रोड्यूस किया।
दिलचस्प बात यह है कि शुरू में विक्रम और मृणालिनी एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं थे।
मृणालिनी और विक्रम जब पहले मिले दे वर यंगर, और तब मेरे ख्याल से उन एक दूसरे को ज़्यादा, यानी विक्रम ने ज़्यादा पसंद नहीं किया, वो कहे कि शी वॉज वेरी गेम्स और पार्टीज में ज़्यादा, उसका सिर्फ लाइट दिमाग की, यानी यू नो इंटरेस्टेड इन ट्रिवियल थिंग्स, तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। पर लेकिन क्या हुआ कि मृणालिनी ने फिर डांस में बहुत ही सीरियसली इंटरेस्ट लिया, और वेरी इन अ वेरी डेडिकेटेड वे शी हैड फाउंड हर कॉलिंग। तो जब दोबारा मिले तब दोनों सेट हो गए थे उनकी करियर्स, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते थे, लेकिन दोनों कहते थे कि हम शादी नहीं करेंगे, हमें शादी में दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो डांस सीख करना है, मुझे तो साइंस सीख करना है, ऐसे बोलते बोलते शादी हो गई।
जिस दिन उनकी शादी हुई उसी दिन वो ट्रेन से बेंगलोर से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। वो भारत छोड़ो आंदोलन के दिन थे, आंदोलनकारियों ने हर जगह रेल की पटरियां उखाड़ दी थी, जिसकी वजह से जो यात्रा 18 घंटे में पूरी होनी थी उसे पूरा होने में पूरे 48 घंटे लगे, और विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई ने अपना हनीमून ट्रेन के फर्स्ट क्लास कूपे में मनाया। विक्रम का अपनी होने वाली पत्नी को उपहार देने का अंदाज सबसे अलग हुआ करता था।
मृणालिनी ने मुझे इंटरव्यू में कहा बहुत हंस के कि एक भी सीधा गिफ्ट नहीं दिया, यानी मैंने पूछा क्या क्या गिफ्ट दिए, तो उन्होंने कहा एक बार कोई एक बहुत ही खूबसूरत टिबेटन सिल्वर रिंग या ऐसा कुछ, यानी नॉट अ डायमंड रिंग और यू नो इतने अमीर, बट ही सेड इट वाज अ ब्यूटीफुल रिंग बट इट वाज अ टिबेटन सिल्वर रिंग, और दूसरी बार एक स्लेंडर लॉरिस, यानी स्लेंडर लॉरिस क्या होता है कि एक मंकी जैसे श्रीलंका में और साउथ इंडिया में बट रेयरली देखने को मिलता है, एक बंदर जैसा थोड़ा दिखता है लेकिन छोटा होता है। तो एक दिन मृणालिनी ने दरवाज़ा खोला, कोई ने किसी ने बेल मारी होगी और खोला तो ये स्लेंडर लॉरिस उनके फियांसे से आई थी, उनका नहीं चाहिए। लेकिन एक और बहुत खूबसूरत गिफ्ट मेरे ख्याल से जो शादी के दिन सवेरे एक विक्रम साराभाई ने बहुत ही ढूंढा बाजार से, और वो क्या बोलते हैं बहुत ही रेयर ब्लू लोटस और एक बहुत ही सुंदर सिल्वर थाली में भेजा, तो तब बोला कि हाँ बस ठीक है।
विक्रम साराभाई बहुत मेहनत करते थे, वो वैज्ञानिक होने के साथ साथ बहुत अच्छे प्रशासक भी थे। तनाव से मुक्ति के लिए वो हमेशा संगीत का सहारा लिया करते थे। कहा जाता है कि उनके पास रिकॉर्ड्स का बहुत जबरदस्त संग्रह था। कुंदनलाल सहगल उनके पसंदीदा गायक थे। उन्हें सीटी बजाने का बहुत शौक था। उनके साथ काम करने वाले बताते हैं कि वो प्रयोगशाला में आ गए हैं इसका पता तब चलता था जब वो सीटी बजाते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे होते थे और उनकी चप्पलों की आवाज गूंज रही होती थी।
क्लासिकल वेस्टर्न और क्लासिकल इंडियन का बहुत शौक था और वो अक्सर काम करते समय ट्यून्स विसल करते थे। उनको टैगोर के गाने बहुत पसंद थे, सहगल के गाने बहुत पसंद थे।
विक्रम साराभाई अपने वजन के प्रति हमेशा जागरूक रहते थे। सुबह तड़के उठते थे, 12 बार सूर्य नमस्कार करते थे और मौका मिलने पर तैरते थे। घर पर खाने की मेज पर वो दही, अचार, पापड़ और सलाद के साथ सिर्फ एक रोटी खाया करते थे। शुरू से ही वो परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के पक्षधर थे। इंडिया टुडे के संपादक राज चेंगप्पा अपनी किताब वेपन्स ऑफ पीस में लिखते हैं,
परमाणु बम बनाने के मुद्दे पर विक्रम साराभाई और होमी भाभा के विचार बिल्कुल नहीं मिलते थे। भाभा की मृत्यु के 5 महीने बाद जब उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख का काम संभाला तो सबसे पहले भारत के नए नए परमाणु बम कार्यक्रम को समाप्त करने की तैयारी शुरू कर दी। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना याद करते हैं कि साराभाई का मानना था कि हथियार के रूप में परमाणु बम बेकार की चीज है, वो सिर्फ एक कागजी शेर है। परमाणु बम के प्रति साराभाई की सोच से मोरारजी देसाई बहुत खुश हुए। कई साल बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने राजा रमन्ना से कहा, साराभाई समझदार लड़का था, वो पागल भाभा तो पूरी दुनिया को उड़ा देना चाहता था। जब उनके सामने भाभा का ये तर्क रखा गया कि परमाणु बम बनाने में बहुत कम खर्च होगा तो विक्रम साराभाई का जवाब था, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि 2 गज कपड़े की कीमत क्या होगी, लेकिन ये 2 गज कपड़ा बगैर किसी करघे या मिल के तो बनाया नहीं जा सकता।
1971 को विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम के कोवालम बीच गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। सुबह जब वो सोकर नहीं उठे तो उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। मच्छरदानी के अंदर वो शांतिपूर्वक लेटे हुए थे। उनके सीने पर एक किताब पड़ी हुई थी। जब डॉक्टर ने उनकी जांच की तो पता चला कि 2 घंटे पहले उनका स्वर्गवास हो चुका था। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 52 साल।
मैं शूटिंग कर रही थी मेरी फर्स्ट फिल्म को और मैं और अम्मा दोनों बॉम्बे थे। हम राह देख रहे थे न्यू ईयर्स ईव के लिए। पापा त्रिवेंद्रम से वापस आकर हमें अहमदाबाद ले आने वाले थे और मेरी और पापा की डेट थी जिमखाना क्लब में डांसिंग जाने की। तो उसी सुबह 29th मॉर्निंग मैं 5 बजे शूटिंग पे जा रही थी, पापा एयरपोर्ट पे जा रहे थे। हमने कहा दूसरे दिन मिलेंगे। मैंने कहा पापा आप मेडिकल टेस्ट करवा के आए हैं, तो इसे डोंट बी सिली, डोंट वरी, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। मैं कल ही गया था और ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है। और 30th मॉर्निंग मैं शूटिंग पे गई तो अम्मा का फोन आया मेरे डायरेक्टर पे कि मल्लिका को वापस ले आओ घर। तो गाड़ी में वापस आते टैक्सी में अंधेरी से लिटिल गिब्स रोड, मुझे ऐसे ही डर था कि अम्मा को कुछ हुआ है। मैं इमेजिन तक नहीं कर सकती थी कि पापा को कुछ हुआ है। मैं घर पहुंची तो नीचे पूरी गाड़ियां भरी थी, सब लोग सफेद में थे, रो रहे थे। एलिवेटर में मैं ऊपर गई तो पापा के सेक्रेटरी बाहर खड़े थे। मैंने देखा उन्हें, उन्होंने कहा आओ अंदर। मैं गई तो अम्मा बेडरूम में बैठ के रो रही थी। ऑल शी सेड इज मल्लिका पापा इज गॉन। और मेरे तो समझ में ही नहीं आया पापा गॉन का मतलब क्या। सो आई इमीडिएटली सेड एयर क्रैश, क्योंकि उनको कुछ होगा वो तो बिल्कुल इमेजिनेशन में के बाहर था।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और सभा समाप्ति से पहले एक बार फिर मुख्य समाचार।
चीन ने आरोप लगाया है कि भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने का फैसला लेकर क्षेत्र में तनाव बढ़ाया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने जोर दिया है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की। अमरीकी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ताइवान को $8 अरब में F-16 लड़ाकू विमान बेचने की दिशा में आगे बढ़ा है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे दिन भर में। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया तिलक भाटिया ने। अपूर्व कृष्ण को अनुमति दें। नमस्कार।